ओम शांति। ब्राह्मण जीवन, त्याग, तपस्या और सेवा के जीवन है। ज्ञान सागर बाप इस संसार में आकर के हर रोज की मुरली के माध्यम से हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। इस सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझाने के साथ साथ मानव जीवन से संबंधित जो भी बातें हैं उन सभी बातों का कारण और निवारण दोनों ही बातें हम सभी को समझाते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए कई प्रकार की विधि बताते हैं। पुरुषार्थ में आने वाली रुकावटें, पुरुषार्थ में आने वाली बाधाएं और उनको सॉल्व कैसे करें, उसके लिए बाबा हमें भिन्न भिन्न ज्ञान की पॉइंट्स देते हैं। तो आज से आप हम सभी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और सीरीज का नाम है राजयोग की प्रयोगशाला। तो बाबा के हर रोज की मुरली से कुछ ज्ञान के पॉइंट्स लेकर के उन पर गहराई के साथ मनन चिंतन करके उनमें से कुछ एक बिंदुओं को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करें, उसका अनुभव करें और उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट, उसका परिणाम क्या निकलता है उसको देखें, जिससे अन्य आत्माओं के लिए भी हम एक आदर्श स्थापित कर सकें। तो आज की साकार मुरली से विशेष तीन पॉइंट्स निकाले हैं। उसमें से पहली पॉइंट है सेल्वेशन आर्मी। बाबा ने आज की मुरली की मेन हेडिंग में कहा है, तुम बच्चे ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो, रूहानी सोशल वर्कर। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले स्वयं को सेल्वेज करना और फिर संसार की अन्य आत्माओं को सेल्वेज करना। संसार में वर्तमान समय सभी आत्माएं दलदल में फंसी हुई हैं, चाहे अज्ञानता की दलदल हो, चाहे विकारों की दलदल हो, चाहे व्यर्थ की दलदल हो। संसार में अनेक प्रकार की जो दलदल हैं उनमें फंसी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को पहले स्वयं को सैल्वेज करना है, फिर अन्य आत्माओं को उनसे सैल्वेज करना है। जैसे भगवान ने हम बच्चों को आकर के सैल्वेज किया, हम जीवन में कई प्रकार के नेगेटिविटी, बुराइयों में या कुछ अपनी कमजोरियों में फंसे हुए थे, उलझे हुए थे, उनसे निकलने की कोशिश तो करते थे, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर विधि, प्रॉपर मेथड नहीं मिल रहा था। तो बाबा ने जैसे हम बच्चों को ज्ञान का प्रकाश दे करके, विशेष शक्ति दे करके, हम बच्चों में हमारा मनोबल बढ़ा करके जिस प्रकार से हमें सैल्वेज किया, उसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि आपको संसार की अन्य आत्माओं को भी सैल्वेज करना है। तो संसार के अन्य आत्माओं को सैल्वेज करने वाले हम सभी आत्माएं हैं। तो सैल्वेज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सैल्वेज करना है। तो उसके लिए 7 बातें हमें पहले अपने जीवन में अप्लाई करनी है, और वो 7 बातें हैं। पहली बात है साक्षी, साक्षी भाव। क्योंकि हमें संसार के जिन आत्माओं को सैल्वेज करना है, वो आत्माएं दलदल में फंसी हुई हैं। यदि हम स्वयं भी दलदल में फंसे हुए होंगे तो हम दूसरी आत्माओं को सैल्वेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में साक्षीपन की जो स्थिति है, साक्षीपन का जो अभ्यास है, अनुभव है, वो बहुत बहुत आवश्यक है। साक्षीपन की स्थिति के माध्यम से हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि हम कहाँ तक जो नेगेटिविटी है, बुराइयाँ हैं, व्यर्थ हैं, या अपनी कमी कमजोरियाँ हैं, या हमारे स्वयं के पुराने संस्कार हैं, उनसे हम कहाँ तक बाहर निकले हैं। तो सबसे पहली बात है कि साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास आवश्यक है, यह हमारी साक्षीपन की स्थिति स्वाभाविक होनी चाहिए। दूसरी विशेषता, दूसरी क्वालिटी है अटेनमेंट्स। जो आत्माएं संसार की अन्य आत्माओं को सैल्वेज करने वाली हैं, वो आत्माएं स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन में जो भी खजाने दिए हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, उन सभी खजानों से जब हम स्वयं को भरपूर करेंगे, स्वयं को संपन्न बनाएंगे, उसके अनुभवी बनेंगे, तो उसके माध्यम से हम अपने आप को भी सैल्वेज कर सकेंगे और संसार की आत्माओं को भी उसके अनुभव के माध्यम से हम सैल्वेज कर सकेंगे। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में जो भी ईश्वरीय खजाने हैं, वो उन खजानों से हमें अपने आप को भरपूर रखना, भरपूर करना आवश्यक है। तो जो ऐसी सेल्वेशन आर्मी के सोल्जर्स हैं, उनकी दूसरी विशेषता है कि वो सभी खजानों से संपन्न होंगे। तीसरी विशेषता है लाइट, हल्का होकर रहना। हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन में हम सभी के साथ हर दिन की दिनचर्या में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, जिन बातों के चिंतन में यदि हम जाते हैं तो हम उस समय तुरंत भारी हो जाते हैं। जैसे कि चलते चलते कोई कमेंट कर देगा, कोई टोंट कसेगा, या कोई ना कोई ऐसी बात बोलेगा जो बात हमें पसंद नहीं है, तो उस समय यदि हमने उस बात को लेकर चिंतन किया, उसके गहराई में गए, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? भारी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि आपको संसार की आत्माओं को सैल्वेज करना है तो आपको स्वयं को हल्का बनना पड़ेगा, और हमारी उस हल्की स्थिति का यादगार हनुमान जी के रूप में है, महावीर के रूप में, जो हमेशा उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। तो तीसरी विशेषता है लाइटनेस, हल्कापन। तो हमें अपने आप पर यह काम करना है कि जब भी कोई ऐसी बातें हमारे साथ में होती हैं, कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध कुछ ऐसा करता है, कोई कुछ बोलता है, तो उस समय हमें उसके गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि हम उसके अनुभवी तो हो गए कि ऐसा तो होगा, कोई ना कोई कुछ तो बोलेगा, तो उस समय हमें अपने आप को हल्का रखना है। अपने आप को हल्का रखेंगे तो हम अपने आप को भी उस समय जो दलदल बनने वाली है जिसमें हम फंसने वाले थे, उस समय अपने आप को भी हम सेल्वेज कर सकेंगे और अन्य आत्माओं को भी सेल्वेज कर सकेंगे। अगली विशेषता है बेहद, जो आत्माएं सदा बेहद में रहती हैं, जैसे भगवान सदा बेहद में है, तो बाबा ने संसार में आकर के हम सभी को सहज ही सेल्वेज किया, इस दलदल से बाहर निकाला। तो इसी प्रकार से यदि हमारी स्थिति बेहद की होगी, हम सदा बेहद में रहते हैं, तो इस संसार में आने वाले जो भी समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, जो भी कारण हैं, उन सभी कारणों को और उनके निवारणों को हम सहज ही सॉल्व कर सकते हैं, उनके कारणों को जान सकेंगे और उसका प्रॉपर समाधान क्या है उसको भी हम ढूंढ सकेंगे और उसको सॉल्व कर सकेंगे, चाहे स्वयं के बारे में हो या अन्य आत्माओं के बारे में हो। तो एक तो हमें सदा बेहद की स्थिति में रहना है और दूसरी बात सदा बेहद में रहना है, लिमिट में नहीं आना, हद में नहीं आना है। जब हम हद में होते हैं, लिमिट में होते हैं, तो कोई भी बात हमारी बुद्धि में क्लियर नहीं होती है, और जिस समय हम बेहद में होते हैं उस समय हमारे सामने सारी बातें स्पष्ट होती हैं। इसलिए जो बेहद की सेल्वेशन आर्मी के सोल्जर्स हैं, उनकी चौथी विशेषता है कि वो सदा बेहद में रहेंगे, स्थिति भी बेहद की हो और साथ साथ बेहद का वैराग्य भी हो, इस संसार में कहीं पर भी कोई राग ना हो, क्योंकि जहां राग होगा वहां हम इंगेज होंगे। अगली विशेषता है एक्टिव, जैसे जो संसार में जो आर्मी होती है उसके जो भी सोल्जर्स होते हैं वो हमेशा ही एक्टिव और अलर्ट रहते हैं, तो इसी प्रकार से इस ब्राह्मण जीवन में हमें हमेशा अलर्ट और एक्टिव होकर के रहना है, क्योंकि हम सभी का जो शत्रु है, जो माया है, वो बहुत सातिर है, वो कब कहाँ से हमला करे उसके बारे में कुछ भी कहा जा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से हमें, तो इसके लिए हमें हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहना है। तो यदि हम अलर्ट और एक्टिव होंगे तो शत्रु का कहीं से भी कोई भी वार होगा तो उससे अपने आप को हम सहज सेव कर सकेंगे। तो जो रूहानी मिलिट्री के सोशल वर्कर्स हैं उनके ये विशेषता है कि वो हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहेंगे। अगली छठवीं विशेषता है जेनरस, वो उदार चित होंगे, क्योंकि हमें इसका एहसास है कि वर्तमान समय भगवान से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं और भगवान से जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं वो प्राप्तियां कितनी श्रेष्ठ हैं, कितनी महान हैं, उन प्राप्तियों से हमारे जीवन में कितना श्रेष्ठ परिवर्तन आया। संसार में मनुष्य आत्माओं की जो इच्छाएं थी या हमारी व्यक्तिगत जो इच्छाएं थी, उन प्राप्तियों के कारण हम उन इच्छाओं से अपने आप को मुक्त कर सके। तो संसार के जो आत्माएं हैं, जो समस्याओं में फंसी हुई हैं, दलदल में फंसी हुई हैं, उन आत्माओं के प्रति रहम की भावना, उदार चित्त की भावना ये आवश्यक है। तो जो भी रूहानी सोशल वर्कर हैं उनके अंदर ये विशेषता होनी आवश्यक है कि संसार की जो भी आत्माएं हैं, चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखती हों, किसी भी भाषा की, किसी भी देश की हों, संसार की सभी आत्माओं के प्रति उदारता की भावना हो कि इन आत्माओं का उद्धार हो, इनका भी कल्याण हो। जैसे हमने भगवान से सर्व प्राप्तियां करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, तो इसी प्रकार से संसार की सभी आत्माओं का जीवन भी श्रेष्ठ बने, वो भी भगवान से अपना अधिकार, अपना वर्षा प्राप्त कर सकें। अगली लास्ट सातवीं विशेषता है एनलाइटनमेंट, सदा जागती ज्योत। तो इस ब्राह्मण जीवन में अपने आप को सेल्वेज करने के लिए, संसार की आत्माओं को सेल्वेज करने के लिए सदा जागती ज्योत बनकर रहना आवश्यक है, क्योंकि जिस समय हम थोड़े भी अज्ञानता की निद्रा में सोते हैं या झुटका लेते हैं, उस समय ही कोई ना कोई हमारे से ऐसी गलती होने की संभावना रहती है जो हम बार बार उस दलदल में फंस सकते हैं। यदि सदा जागती ज्योति की स्थिति होगी तो हम कहीं भी फंसे हुए नहीं होंगे। हम किसी भी समस्या में, किसी भी कारण में उलझे हुए नहीं होंगे। साथ साथ हम संसार की आत्माओं को भी समस्याओं से, बंधनों से निकाल सकेंगे। तो ये सात ऐसी विशेषताएं हैं जो हम सभी रूहानी सोशल वर्कर में होनी चाहिए। तो जैसे बाबा हम बच्चों को सेल्वेज करते हैं, सेल्वेज किया, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाया, उसी प्रकार से हम संसार की आत्माओं को भी सेल्वेज कर सकते हैं। वैसे आप हम सभी संसार के जो भी आत्माएं हैं उनको भगवान का परिचय देते हैं, ज्ञान की बातें सुनाते हैं, उनको स्वयं का परिचय देते हैं, ये तो हम करते ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन के माध्यम से भी उन आत्माओं को प्रेरित करना है, क्योंकि संसार की आत्माएं सुनने के साथ साथ हमारे प्रैक्टिकल जीवन से देखना चाहते हैं कि जो हम कहते हैं वो हम स्वयं भी करते हैं या सिर्फ कहते हैं। यदि हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में उन बातों को अप्लाई करते हैं तो वो आत्माएं हमारे से प्रेरणा लेकर के वो अपने जीवन को भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो आज के मुरली से पहली पॉइंट है सेल्वेशन आर्मी। तो बाबा ने कहा कि आपको अपने आप को भी सेल्वेज करना है और संसार की अन्य आत्माओं को भी सेल्वेज करना है। दूसरी पॉइंट है कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, निरंतर याद। तो बाबा ने आज के मुरली में इसके लिए विशेष भक्त श्रोमणी गीत मीरा को याद किया। तो बाबा ने कहा कि जैसे मीरा का श्री कृष्ण के साथ प्यार है, वो हमेशा उनके याद में खोई रहती थी, खाते पीते चलते फिरते कामकाज करते सदा उसकी बुद्धि में श्री कृष्ण की छवि समाई हुई रहती थी। इसी प्रकार से भगवान जो जिसके साथ हमारे कल्प कल्प के संबंध है, कल्प कल्प का हमारा उससे प्यार है, तो उसकी याद भी हमारे जीवन में निरंतर होनी चाहिए। और उस याद के लिए हम कई प्रकार की विधियां अपनाते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो उस नए कार्य को शुरू करने से पहले हम पहले शिव बाबा को, भगवान को याद करते हैं। तो इस विधि को हम अपनाते तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और इसमें पॉइंट ऐड करनी है। वो है कि जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करने जाते हैं तो उस समय हमें उसकी याद के साथ साथ उसका आह्वान भी करना है। हम याद तो करते हैं लेकिन याद के साथ साथ हमें उसका आह्वान भी करना है और उसका अनुभव करना है कि बाबा अभी हमारे पास पहुंच गया, हमारे साथ साथ है। जैसे किसी को आप बुलाते हैं, किसी का आह्वान करते हैं, वेलकम आइए, तो भगवान को भी हमें आह्वान करना है। और हर कार्य के साथ, जैसे हम कहीं जाते हैं तो उसका आह्वान करें और उसको अपने साथ साथ लेकर चलें और अनुभव भी करें कि बाबा अभी हमारे साथ साथ चल रहा है। जैसे हम भोजन करने जाते हैं, जिस समय हम भोजन करने जाते हैं तो उस समय हम बाबा को याद तो करते हैं लेकिन याद के साथ साथ उसको आह्वान भी करना है और बाद में उसको थैंक्स भी देना है। तो हम जीवन में जो भी एक्टिविटी करते हैं उस हर एक एक्टिविटी के साथ उसका आह्वान करना है। हर एक काम के साथ कोई भी कार्य करते हैं, चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, तो जितना हम उसका आह्वान करेंगे उतनी हमारी उसके साथ बुद्धि की लिंक जुटी रहेगी और हमारी याद निरंतर की ओर बढ़ती रहेगी, जैसे आप सभी करते हैं खुदा दोस्त के रूप में। तो हमें भगवान को बार बार आह्वान करना है। दूसरी विधि है निरंतर याद के लिए कि उससे वार्तालाप करना, उससे बातें करना। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी खूबियां हैं या उसके जो भी उसकी भावनाएं, वो उसको हम अनुभव करते हैं उस समय। तो इसी प्रकार से भगवान से यदि हम बार बार बात करते हैं हर छोटी छोटी बात के लिए, चाहे बात अच्छी हो या बुरी हो, हमारे पसंद की हो या नापसंद की हो, हर बात के लिए उससे वार्तालाप करना। तो जितना हम उसके साथ वार्तालाप करेंगे तो उससे भी हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, साथ साथ जो उसके प्रकंपन हैं, जो उनके वाइब्रेशंस हैं, उसकी भी हमको अनुभूति होगी। तो इससे भी हमारी याद की यात्रा जो निरंतर बनी रहेगी। अगला है उसके कार्य में मददगार, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस के लिए, निरंतर याद के लिए उसके कार्य में मददगार बनना। तो जिसके कार्य में हम सहयोगी बनते हैं, मददगार बनते हैं, संसार में भी ये नियम है कि उसकी याद स्वतः आती है। तो जब हम भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं, हमारी जो भी विशेषताएं हैं, जो भी कला कौशल है, उसके माध्यम से हम सहयोगी बनते हैं, तो हमें याद रहता है कि हम किसके कार्य में सहयोगी हैं, किसका ये कार्य है। तो जितना हम उसके कार्य में सहयोगी बनेंगे उतना उसकी याद स्वतः आती रहेगी। और अगला एक विधि है, जिस विधि को हम सभी को अप्लाई करना है। वर्तमान समय सभी को साइंस ने एक साधन दिया हुआ है, मोबाइल, और उसको हम सभी यूज करते हैं। तो साइंस ने हमें जो साधन दिया हुआ है, इसका हम बहुत बहुत इसका हम लाभ ले सकते हैं। तो उसकी विधि है कि जब भी कोई हमें कॉल करता है, तो उस कॉल को रिसीव करने से पहले हमें अपने आप को एक सेकंड में अशरीरी बना लेना है। एक सेकंड का जो अभ्यास है जो हम कर सकते हैं, एक सेकंड में अपने आप को अशरीरी बना लेना है, उसके बाद कॉल को रिसीव करना है। साथ साथ यदि स्क्रीन पर उस व्यक्ति का नाम आ रहा है तो उस आत्मा को भी हम अनुभव कर सकते हैं, साथ साथ एक सेकंड में उस आत्मा को हम दृष्टि दे सकते हैं। तो जैसे इस ब्राह्मण संसार में एक विधि है निरंतर याद के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल, इसी प्रकार से इस विधि को भी हम अपने जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी किसी का कोई कॉल आता है, उस कॉल को रिसीव करने से पहले एक सेकंड में अपने आप को अशरीरी बनाना, साथ साथ उस आत्मा को भी इमर्ज करना, उसको सकाश देना, फिर बाद में बात करना, हेलो करना। इसी प्रकार से जब हम किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करने से पहले उस आत्मा को पहले याद करना, उसके बाद उसको कॉल करना, उससे बात करना। तो ये एक ऐसी विधि है जिसको हम अप्लाई करते हैं तो दिन में हम देखेंगे कितनी बार ऐसा समय आता है जब हम किसी का फोन अटेंड करते हैं या किसी को हम फोन करते हैं, कॉल करते हैं। तो ये एक ऐसी विधि है जिस विधि के माध्यम से हमारी याद की यात्रा निरंतर बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके बहुत सारे फायदे भी आपको अनुभव होंगे, जैसे आपकी इसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आपको इसके बहुत सारे अनुभव भी प्राप्त होने लगेंगे। जैसे कि जब हम किसी का फ़ोन रिसीव करते हैं, किसी का कॉल आया, हम अशरीरी हुए, उसके बाद हमने उसका फ़ोन अटेंड किया, तो जैसे ही हम अशरीरी बनते हैं तो उस समय हमारी स्थिति शक्तिशाली हो जाती है। यदि बार बार का अभ्यास है तो एक सेकंड में हमारी स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। दूसरी बात है, हम उस समय अपने आप को साक्षीपन की स्थिति में अनुभव करते हैं कि हम बिल्कुल साक्षी हैं। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाली आत्मा का फ़ोन हमारे पास कॉल आता है और वो कॉल कुछ ऐसी बात के लिए है जो हमारे को हर्ट कर सकता है, और उस समय यदि हम इस विधि को अप्लाई करते हैं तो उस समय हमारी स्थिति शक्तिशाली रहेगी, हम डगमग नहीं होंगे, हाँ, व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। तीसरी बात है कि उस जैसे हम अशरीरी होते हैं तो भगवान की याद स्वतः आती है। चौथा उसका फायदा है कि जिस भी आत्मा से हम बात करते हैं उस आत्मा को हमने दृष्टि दी तो ये हमारी एक सेवा भी हो जाती है। तो इस एक मेथड के माध्यम से हम एक साथ बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। तो डेली की दिनचर्या में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि जब भी किसी का कॉल आता है उस कॉल को रिसीव करने से पहले एक सेकंड में अशरीर हो जाए, अपने आप को अशरीर बनाएं, साथ साथ उस आत्मा को भी आत्मिक दृष्टि में उसको देखें, उसको दृष्टि दें, उसके बाद उससे हेलो करें। ये अपने मोबाइल के लिए है, स्वयं के लिए है। हाँ, उसमें भी कर सकते हैं, वो हर एक के अपने फुर्सात पर डिपेंड है। बाकी इस विधि को हम डेली अप्लाई कर सकते हैं, इसका हमें प्रयोग करना भी है, हमेशा करना है। जब भी जब जब कॉल आता है किसी का, तब तब ये इसका प्रयोग करना है, और जब भी किसी को हम कॉल करते हैं उस समय भी इसका अभ्यास करना है। कुछ समय के बाद ये हमारी प्रैक्टिकल रूटीन में नेचुरल स्वाभाविक हो जाएगा। अगले तीसरी पॉइंट है, बाबा ने आज के स्लोगन में कहा है कि अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर रखना है तो पहले अंतर्मुक्ताई गुफा में जाओ, उसके बाद फिर बाहर मुक्ता में आओ। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उस हर एक कार्य पर हमारी स्थिति का प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, तो कार्य भी श्रेष्ठ होता है, सफल होता है। यदि हमारी स्थिति हल्की है, डामाडोल है, तो कार्य में भी असफलता मिलती है। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें जो अंतर्मुक्ता की गुफा के अभ्यास के लिए कहा है, यदि हम इस विधि को अपना करके उसके बाद हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो इससे हमारी जो स्थिति बनेगी वो स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनेगी, और उसके बाद हम जो भी कार्य करेंगे उस हर कार्य में हमें सफलता का अनुभव होगा। तो हमें लक्ष्य रखना है कि कोई भी कार्य करने से पहले हम पहले अंतर्मुक्ता की गुफा में जाएं, और अंतर्मुक्ता की गुफा में जा करके हमें एक फार्मूला अप्लाई करनी है, और वो फार्मूला है 7S फार्मूला। उस 7S फार्मूला में सबसे पहली बात है सोल कॉन्शियसनेस। अंतर्मुक्ता की गुफा में जा करके पहले हमें अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करना है। सेकंड है सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, भगवान को याद करना। तीसरा है सुप्रीम अबोध, परम धाम को याद करना। ये हमें सेकंड में करना है, अंतर्मुक्ता की गुफा में जा करके ये हमें सेकंड में इसका अभ्यास करना है। सेकंड में अशरीर हुए, आत्मअपमान स्थिति में स्थित हुए, भगवान को याद किया, और हम सीधे परम धाम में पहुंच गए। परम धाम घर को याद किया, जो वहाँ की विशेषताएं उनको याद किया। और चौथा है सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने सामान को याद किया कि हम भगवान ने हमें वर्तमान समय कौन कौन से श्रेष्ठ सामान दिए। तो उस समय हम यदि श्रेष्ठ सामान को याद करेंगे तो उससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। नेक्स्ट है साक्षी, साक्षीपन की स्थिति में स्थित होना है। साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर के हम जिस जो भी कार्य करने जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम जा रहे हैं, उसको एक सेकंड में उस कार्य को भी देख लेना है। तो ये हमें कार्य अंतर्मुक्ता की गुफा में जा करके ये कार्य करना है। अगला है श्रीमत, बाबा ने हमें हर कार्य के लिए जो श्रीमत दी है, जिस कार्य को करने के लिए हम जा रहे हैं उस कार्य के लिए बाबा ने हमें कौन कौन सी श्रीमत दी है, उस श्रीमत को भी हमें तुरंत याद कर लेने हैं। कितने हो गए? छः। सातवां कौन सा है? सरेंडर, सरेंडर होकर के। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में जा करके हमें इन 7S जो फार्मूला है, इस फार्मूला को पहले अप्लाई करना है अपने आप पर, उसके बाद बाहर मुक्ता में आकर के हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करें। तो यदि हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, उसके बाद कोई भी कार्य करते हैं, तो वो कार्य करते समय हम एक तो हल्के रहेंगे, उस कार्य का हमारे ऊपर कोई भी बोझ का अनुभव नहीं होगा। दूसरी बात है वो कार्य शक्तिशाली होगा, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति शक्तिशाली है, हमारा मनोबल हाईएस्ट है, टॉप लेवल का है। उसमें हमारी बुद्धि भी सुदृढ़ होती है, संस्कार भी श्रेष्ठ होते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम जो भी कार्य करने जाते हैं या कार्य करते हैं या डेली के रूटीन में, तो वो कार्य करने से पहले हमें इस विधि को अप्लाई करना है। तो बाबा ने आज के स्लोगन में जो कहा है कि अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, तो उसके लिए पहले अंतर्मुक्ता की गुफा में जा करके इस 7S का अनुभव करना है, उसके बाद में बाहर मुक्ता में आकर के या प्रैक्टिकल फील्ड में आकर के हम जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में हम सहज सफलता हासिल कर सकेंगे, क्योंकि हर एक कार्य पर हमारी स्थिति का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो आज की साकार मुरली से विशेष ये तीन विधियां निकाले हैं। तो पहली विधि है सेल्वेशन आर्मी बन करके हमें अपने आप को सेल्वेज करना है, साथ साथ संसार की अन्य आत्माओं को भी सेल्वेज करना है। सेकंड दूसरी पॉइंट है कांस्टेंट रिमेम्बरेंस के लिए, तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस के लिए आह्वान करना है, उससे बातें करनी है, उससे वार्तालाप करने है, धन्यवाद करना है, साथ साथ मोबाइल को यूज करना है। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकल में एक्टिविटी करेंगे इसकी। तो हर एक के पास अपना अपना मोबाइल तो होगा ना, तो सभी अपना अपना मोबाइल निकालेंगे, सभी अपना अपना मोबाइल निकालेंगे, पहले अपने पास रखेंगे, कोई भी हाथ में नहीं लेंगे पहले मोबाइल को, समझो कि अपना मोबाइल हमारे पॉकेट में है या पर्स में है। और हम जैसे कि कोई कार्य में बिजी है, हम कार्य में उसमें इन्वॉल्व हैं, अचानक किसी की रिंग बजती है, किसी का कोई फोन आता है, कॉल आता है, तो रिंग बजती है। तो रिंग बजते समय जैसे हम फोन को हाथ में लेते हैं, फोन को हाथ में लेते समय या उससे पहले हम पहले अपने आप को अशरीरपन की स्थिति में स्थित करें, एकदम बिल्कुल देह से न्यारे हो जाएं, उसके बाद में हम फोन को उठा करके उसको देखें कि किसका फोन है। जैसे हमें स्क्रीन पर किसी व्यक्ति का नाम दिखाई देता है तो तुरंत हम उसको याद करें, उसको याद करके उसको भी हम दृष्टि दें, उसको सकाश दें, और फिर उसके बाद में कॉल रिसीव करके उससे हम बात करें, हेलो करें, हाय हेलो करें, जो भी करते हैं, कैम छो, कैसे हो, हाउ आर यू, जो भी है, उसके बाद हम उससे बात करना शुरू करें। तो सभी इस एक्टिविटी करेंगे, किसी का रिंग आ रहा है, किसी का रिंग आ रहा है, हाँ, तो जैसे अभी यहाँ रिंग बजेगी तो सभी समझना कि हमारे फ़ोन पर किसी का कॉल आया हुआ है। कॉल रिसीव करने से पहले अशरीर बनना है, सभी अशरीर हो जाएंगे एक सेकंड के लिए, फिर बाद में अपने कॉल को देखेंगे किसका कॉल है, किसी जिस व्यक्ति का नाम है स्क्रीन पर उसको सकाश देंगे। ये सब प्रक्रिया एक सेकंड में करनी है, उसके बाद में कॉल को रिसीव करके उसे हेलो करना है। तो इस मेथड को हमें डेली अप्लाई करना है, क्योंकि ये मेथड ऐसा है जो हमें, जिसको हम यूज तो करते हैं लेकिन इसका हम बहुत बहुत लाभ ले सकते हैं। जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल को अप्लाई करते हैं, हम जो भी कार व्यवहार में होते हैं, काम काज करते हैं, वो सब कुछ करते हुए भी उसको हम अप्लाई करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में हम अपने आप को स्थित करते हैं, अशरीरी बनते हैं, बाबा को याद करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम इस मेथड को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि दिनचर्या में दिन में कितनी बार ऐसा समय आता है जो हमें किसी का मैसेज आता है, किसी का कॉल आता है, या हम किसी को कॉल करते हैं, यदि उसको हम इस विधि से अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो हमारे जो याद की यात्रा है उसमें हम बहुत उन्नति कर सकते हैं। तो इस विधि को हम डेली अप्लाई करें। तो तीसरी बात जो बताई कि बाबा ने आज जो कहा कि अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, तो पहले अंतर मुक्ता ही गुफा में जा करके फिर बाहर मुक्ता में आओ। तो जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने से पहले कुछ समय के लिए हम अंतर मुक्ता ही गुफा में जाएं, फिर इन 7S को स्थूल तो हम कहाँ जाएंगे, हम सूक्ष्म में इसका अभ्यास करेंगे। जैसे कोई गुफा है हम वहाँ उसमें प्रवेश किया, वहाँ बैठे और हमने इन 7S फॉर्मूले को यूज किया, फिर गुफा से बाहर आए और अपने प्रैक्टिकल फील्ड में आए। कोई हमें एक गुफा को, उसकी गुफा जो उसकी जो इमेज है वो अपने बुद्धि में पहले से क्रिएट करनी है। उस गुफा को हमने इमेज किया, हम उस गुफा में प्रवेश हुए और गुफा में प्रवेश करके जो 7S है उसको अप्लाई किया, उसके बाद फिर बाहर आए, अपने कार्य व्यवहार में इन्वॉल्व हुए। हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं कि भ्रकुटी भी एक गुफा है, इस गुफा में बैठ करके हम इस गुफा में पहले प्रवेश करना है, देखना है कि हम उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। उस गुफा में प्रवेश करके ये 7S को हम यूज करें, उसके बाद में फिर बाहर आकर के अपने कार्य व्यवहार में संलग्न हो। वो हरेक का अपना अपना पुरुषार्थ है। जब जब हम किसी विशेष कार्य के लिए कोई जाते हैं, या हम अर्ली मॉर्निंग सुबह नाश्ते के बाद जब हम अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, उस समय तो हमें इसका अभ्यास करना ही करना है। हाँ, ये भी अभ्यास कर सकते हैं कि उस गुफा में गुफा में प्रवेश करके आपको नाश्ता करना है। ये अभ्यास भी कर सकते हैं। इसका भी हमें बहुत सारे बेनिफिट अनुभव होंगे। हाँ, गुफा में जाकर के हम विश्राम भी कर सकते हैं। जब भी हम रात को निद्रा के लिए जाते हैं, तो सोने से पहले हम इस विधि को अप्लाई कर सकते हैं कि हम पहले गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम निद्रा लोक में जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, उस अंतर्मुक्ता गुफा में प्रवेश करके फिर वो कार्य हमें आरंभ करने हैं। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकल जीवन में, तो जैसे पहले विधि बताई कि हम रूहानी आर्मी हैं, तो जैसे उस आर्मी की अपनी एक ड्रेस होती है, इसी प्रकार से बाबा ने हमें जो ब्राह्मण जीवन में जो ड्रेस दी है, इस रूहानी आर्मी की जो ड्रेस है, सफ़ेद ड्रेस जो हमें मेडल दिया है, बैज, हमें उसको एक बार याद करना है कि हम रूहानी मिलिट्री के रूहानी सोल्जर्स हैं, और ये हम अभी अपने कार्य क्षेत्र पर जा रहे हैं, ये हमारी ड्रेस है, ये हमारा बैज है, और ये हमारा कार्य क्षेत्र है। साथ साथ जो अभी कहा कि 5 रूपों का जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे उस ड्रिल में जो सोल्जर्स होते हैं वो अभ्यास करते हैं, तो जैसे उस सेना के जो सोल्जर्स होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग ड्रिल करते हैं अपने को सशक्त बनाकर रखने के लिए, इसी प्रकार से हम रूहानी सोल्जर्स को ये 5 रूपों की ड्रिल अवश्य करनी है। और जब भी कोई कार्य करने जाते हैं उस समय हमें ये 5 रूपों की ड्रिल करके फिर अपने कार्य क्षेत्र पर या फील्ड में जाना है, युद्ध के मैदान पर जाना है। हम ध्यान रखें कि जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है वो जैसे कि एक युद्ध का मैदान भी है, क्योंकि उस समय हमारे सामने कोई भी समस्याएं, कोई भी बातें आ सकती हैं किसी के भी माध्यम से। हाँ, तो उस समय याद रखना कि हम सोल्जर्स हैं, और यहाँ इस कार्य क्षेत्र में जो भी बातें हमारे सामने आने वाली हैं उनको हमें बखूबी फेस करना है। उनसे हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है, उन बातों को लेकर के हमें अपने आप को मायूस नहीं करनी है, उन बातों को हमें फेस करनी है, उनको सॉल्व करनी है। जैसे कि एक सेना का व्यक्ति होता है, जब भी कहीं फील्ड में जाता है, हाँ, तो जैसे कहीं वो दुश्मन के एरिया में जाता है तो हमेशा अलर्ट रहता है, वो उनसे डरता नहीं, घबराता नहीं है। तो इसी प्रकार से हम जब भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो हमेशा याद रखें कि जो कार्य क्षेत्र हमारा है वो एक युद्ध का मैदान भी है। तो उस समय माया के कोई भी योद्धा, कोई भी दुश्मन हमारे सामने किसी भी रूप में आ सकता है, तो उस समय यदि हम इस बात को याद रखेंगे कि हम एक रूहानी सोल्जर हैं, और ये हमारी ड्रेस है, ये हमारा मेडल है, और हमारा ये कर्तव्य है कि इस फील्ड में हमें कभी भी घबराना नहीं, भागना नहीं है, समस्याओं को फेस करनी है, बातों को सॉल्व करना है, दुश्मन को पराजित करना है। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम फील्ड में जाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो हम उसमें फेल नहीं होंगे, काफ़ी हद तक उसमें सफलता हासिल करके बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से आज के मुरली से ये 3 अभ्यास हमने लिए, तो सबसे पहला प्रयोग करना है कि जो भी हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं उसके पहले अपने आप को याद दिलाना है कि हम एक रूहानी मिलिट्री हैं, सोल्जर्स हैं, और हमें अपनी ड्रेस याद करनी है, उस समय अपना जो मेडल है, भगवान ने जो मेडल दिया हुआ है बैच, उसको याद करना है, और जहां हम जिस क्षेत्र पर जा रहे हैं वो हमारा एक कार्य क्षेत्र के साथ साथ युद्ध क्षेत्र भी है, तो वहां जाकर के हमें सफलता हासिल करनी है, इसका अभ्यास करना है। और दूसरा प्रयोग करना है कि निरंतर याद के लिए जो हमारे पास साइंस का साधन है मोबाइल, उसको हमें यूज करना है, लेकिन पहले उसको यूज करने से पहले 1 सेकंड में अशरीरीपन का अभ्यास करना है। तीसरा प्रयोग करना है कि पहले अंतर्मुखता गुफा में जाना है, गुफा में जाकर के पहले 7S फॉर्मूला को अप्लाई करना है जिससे हम अपने आप को सशक्त अनुभव करें, सशक्त बने, उसके बाद फिर अपने कार्य क्षेत्र पर जाना है बाहर मुक्ता में आकर के। तो यदि हम इन तीन प्रयोगों को अप्लाई करेंगे तो इस ब्राह्मण जीवन में हमारे जीवन जो है वो एक प्रयोगशाला बन जाएगी और हम निरंतर उसका अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, समस्याओं को सहज ही हम सॉल्व कर सकेंगे और अपनी स्थिति को हम मेंटेन कर सकेंगे, साथ साथ अन्य आत्माओं को भी हम सेल्वेज कर सकेंगे। ओम शांति।